then class group in our day will be sa
sadaya
bhagavan dharma jayaya yasa yadhyatmika yoga
Yeah. वह भक्ति
श्रद्धया
श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति चर्या विवेचना से जिज्ञासया जिज्ञासा से आध्यात्मिक आध्यात्म संबंधी योग निष्ठया ज्ञान में दृढ़ निश्चय से योग ईश्वर श्री भगवान की उपासनया पूजा से च तथा नित्यं नियमित रूप से पुण्य भवः जिसके सुनने से कथया विवेचना से पुण्यया पुण्य से च भी अनुवाद तात्पर्य अवेचना भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। भक्ति करने श्री भगवान के प्रति जिज्ञासा करने जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने योगेश्वर श्री भगवान की पूजा करने तथा श्री भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने में परम पवित्र हैं। तात्पर्य योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवद गीता में यह शब्द दो बार आया है। 18वें अध्याय में 18 और 78 श्लोक में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है जो समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण 6 अध्याय में भी 6:47 योगेश्वर शब्द की व्याख्या सौ में युक्त तमो मत करके की गई है। युक्त तम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्तगण का बोध होता है जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायछे केवल। शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवतम में कहा है नेसामति तावत उर्क्रमांघ्रि इस परस्कृत्यनार्थापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजो विषेकं निष्किंचनानां व्रणीतयावत। मनस को चाहिए कि शुद्ध भक्त की शरण में जाए क्योंकि वह सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनाया कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन लाभ होता है। भगवत गीता 7:28 में कहा गया है कि पवित्र हुए बिना भक्ति नहीं की जा सकती। एसाम त्वंतगतम पापं जलानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम धृणवता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त गुणों के कलमस को पूरी तरह धो डालना होता है। भक्ति कार्य में पहली बात है आदौ गुरुवाश्रयम। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य धर्म सब धर्म प्रच्छा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमन रूप गोस्वामी कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में ये आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती हैं तथा भगवान की दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय करना होता है तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ सकती है। प्रभुपाद की
अनुवाद दोहराइए आप।
हाँ एक बार फिर से भक्ति करने,
भगवान के प्रति जिज्ञासा करने,
जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं।
ओम ज्ञानदस्य ज्ञानञ्जनाशक्तये चक्षुर्मीलयन् श्रीकेतन्यमनोविष्टम् आत्मानेन भूतले स्वयं रूपाकदामय वन्देऽहं श्रीगुरो पिता ने उन्हें आदेश दिया था गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए, पर उनकी इच्छा नहीं थी। अपनी योगिक सिद्धियों द्वारा शरीर को बड़े होने से रोक दिया और उन्हें कुमारा कहा जाता है। और उनका एक ही उद्देश्य था, हर जगह भगवान का उपदेश देना। तो सन कुमार पहुंचे पृथ्वीराज के महल में, और पृथ्वीराज कौन है? वो स्वयं भगवान के अवतार है, शक्ति विश्वतार। अवतार का अर्थ है जो कि आध्यात्मिक जगत से आता है पृथ्वी पर भगवान के संदेश की स्थापना के लिए। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अवतारों के कई विभाग हैं। एक है पुरुषावतार, फिर है गुणावतार, लीलावतार, अनुतरावतार, युगावतार और चतुरावतार। तो पृथ्वी शक्ति इस अवतार के भी दो भाग हैं। एक है जबकि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, दूसरा विभाग है क्योंकि भगवान जिसको शक्ति देते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट शक्ति विश्वतार है, हमारे उन्हें शक्ति दी थी धर्म की स्थापना। तो प्रीतु महाराज हालांकि भगवान के अवतार हैं, उन्होंने बड़े आदर्श भक्त का व्यवहार किया। जब सनत कुमार उनके महल में आए, उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, जल से अपने माथे पर जल को माथे पर गिराया, उनको प्रणाम किया और उनसे अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था कि हम भौतिक सागर के पार कैसे जा सकते हैं। संत कुमार बड़े प्रसन्न हुए उनके प्रश्न के साथ, वो प्रसन्न हुए उनकी विनम्रता देखकर। उन्हें पता था कि पृथ्वीनाथ के पास पूरा ज्ञान था, ये नहीं कि पृथ्वीनाथ अज्ञानी थे, और उन्होंने एक आदर्श राजा भक्त का व्यवहार दिखाया। ये दिखाया कि जब आप किसी संत को मिलो तो उनसे क्या पूछो, ये पूछो कि जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इन श्लोकों में पृथ्वी महाराज को सनत कुमार उपदेश दे रहे हैं, और आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी महाराज के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि नहीं। हम सबको क्या उपदेश दे रहे हैं, भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाया जाए और पवित्र कार्य कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो संत कुमार कह रहे हैं कि हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए। इस विषय की चर्चा सारे शास्त्रों में है, भक्ति योग। भक्ति योग है सारे शास्त्रों का निर्णय। भगवद गीता में भगवान अनेक प्रकार की योगों की चर्चा करते हैं, परंतु क्या कहते हैं, भक्त्या माम। अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो भक्ति एक माध्यम है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो में भक्त्या प्रकट। प्रेम और भक्ति के साथ अगर तुम मुझे जल का प्याला भी अर्पण करोगे या तुलसी का पत्ता भी, मैं स्वीकार करूंगा। तो भक्ति योग का संक्षेप में अर्थ है कि हम मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करें भगवान की सेवा में, और भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और भक्ति योग का पालन कैसे किया जाए, वो ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, कहां से, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इस विषय की चर्चा शास्त्र में बार बार की जाती है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भी भगवान ये स्थापित करते हैं, तद्विदी पारिक देना, कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। और चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को भक्ति की विधियों की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले प्रमाणिक गुरु की शरण लो। और गुरु के विषय में रूप गोस्वामी हमें उपदेश देते हैं, ये नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि हम गुरु हैं, हमारी शरण लो, हमारी शिक्षा का पालन करो और उसमें कोई गुण नहीं हो। इस विषय में रूप गोस्वामी उपदेश के पहले श्लोक में क्या कहते हैं, वहां से वेगम मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रमाणिक गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, पूछो हमें क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और अंत में त्यागना भी पड़े, त्यागो और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत पसंद लो। जैसे कि साधारण समाज में अगर मान लो आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी के इलाज कराने के लिए अगर आपको कोई त्यागना भी पड़े, आप त्यागते हो या नहीं? तुरंत ही तैयार हो जाओगे। इसीलिए रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर कोई त्यागना पड़े तो त्यागो। जब भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो तो ये शिक्षा प्राप्त करते हो कि जो अनुकूल कार्य हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। और इस विषय में रूपा गोस्वामी कहते हैं, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को हाथ से मत्थे समझ लो। तो सबसे पहले संत कुमार कह रहे हैं कि भक्ति योग हमें पालन करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं कि भगवान के प्रति जिज्ञासा करो। तो जिज्ञासा करो, क्या जिज्ञासा? ये नहीं कि हम भौतिक समाज में जिज्ञासा नहीं करते हैं। अब अखबार पढ़ो, जिज्ञासा से भरी है। किसी ने ये पत्रकार ने ये पूछा, मंत्री ने ये उत्तर दिया। आप पाठशाला में जाते हो वहां भी अनेक विषयों की जिज्ञासा होती है। पर हमें किस विषय की जिज्ञासा करनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विषय की। प्रभुपाद जी एक समय अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर आरंभ किया एक प्रश्न के साथ। प्रभुपाद जी ने पूछा, ये अमेरिका के इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा विभाग है जहां की ये शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है? और सब चुप हो गए। तो यहां कहा जा रहा है कि भगवान के प्रति जिज्ञासा करो। तो ये जिज्ञासा करो आप हो कौन। जैसे कि जब रूपर सनातन एक नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे, पर एक रूप से हिस्टोरियंस ने कहा है जबरदस्ती उन्हें जोड़ा गया था नवाब हुसैन शाह की सेवा में, उनकी रुचि थी भक्ति में। तो जब उन्हें मौका मिला वो गए महाप्रभु से मिलने, और जब वो मिले उन्हें राम अकेले में, उनसे क्या प्रश्न पूछा? क्या हमें अब ये बताए, समाज में लोग ये कहते हैं यहां बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, समाज में हमारा बड़ा ऊंचा स्थान है, पर हम ये भी नहीं जानते कि हम हैं। तो ये जिज्ञासा करनी चाहिए। यहां कहा जा रहा है कि भगवान के प्रति जिज्ञासा करो। तो ये जिज्ञासा करो, हम हैं कौन, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या है हमारा कर्तव्य। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश देते हैं। महाप्रभु ने क्या कहा, जीवेश स्वरूपा है कृष्ण नित्य दास। हम सबका स्वाभाविक कर्तव्य ये बनता है कि हम क्या है, भगवान के नित्य दास है। तो यहां संत वहां कह रहे हैं, ये जिज्ञास करो कि भगवान के प्रति आप कैसे शरणागत हो सकते हो। और आगे क्या कहते हैं, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करो। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्ति योग का सिद्धांत है ये केवल थियोरेटिकल है। जैसे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, अंग्रेज जो थे वो ज्यादा होशियार थे, मोर क्लेवर, मुसलमानों ने तो हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, वृंदावन में उस समय जितने प्रसिद्ध मंदिर थे लगभग सबको तोड़ दिया था, इसलिए मूर्तियों को या छुपा दिया था पुजारियों ने या मूर्तियों को उठाकर ले गए थे जयपुर। जयपुर में बड़ी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जो कि गोस्वामी उन्हें भक्तों के द्वारा उपासना की जाती थी, और उस समय वो जयपुर में हिंदू राजा था, इसलिए कई मूर्तियों को जयपुर ले गए थे पूजा के लिए। और जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, और कई मूर्तियों को छुपा दिया था, पृथ्वी के नीचे दबा दिया था, और फिर गोस्वामी की प्रेरणा कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को भेजा वृंदावन में और कहा भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए और मंदिरों का निर्माण करने के लिए, और गोस्वामी की प्रेरणा से ये अनेक मंदिर बनने शुरू हुए। तो जब अंग्रेज जब से आए उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर एक लेख में उनका आभार प्रकट करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अंग्रेजों ने मंदिरों को बचाया, उन्होंने मंदिरों को नष्ट नहीं किया जैसे मुसलमानों ने किया था। पर अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपने बड़े विद्वानों को यहाँ ले आए, संस्कृत की शिक्षा दिलाई, फिर इन स्कॉलर्स ने ग्रंथों का अनुवाद किया, ये स्थापित किया कि इनसे इन शास्त्रों में कोई खास ज्ञान नहीं है, मिथोलॉजी है। एक फेमस लेखक ने कहा था हमारे सारे वैदिक साहित्य उनकी एक पुस्तक के बराबर नहीं है। तो कईयों ने यह प्रोपेगेंडा किया, ये सब माइथोलॉजी है, कल्पना है, प्रमाणिक रूप से इस सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहां संत कुमार कह रहे हैं जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करो, तो भक्ति योग का व्यवहार हो सकता है। भक्ति योग के सिद्धांत के अनुसार परम भगवान हर चीज के स्वामी है, एक ईश्वर कृष्ण सबया, बाकी सब उनके सेवक हैं देवता भी, परम भगवान हर चीज के स्वामी है। तो भक्ति योग सिद्धांत का ज्ञान हो तो व्यक्ति जानता है कि अगर मेरे पास कोई गुण है, थोड़ी सफलता है, तो मुझे इस संपत्ति का उपयोग करो, किसकी सेवा में, भगवान की सेवा में, मंदिर बनाओ, प्रचार में सहयोग करो। भगवान गीता में कहते हैं 3 paths leading to hell, क्या है वो, लस्ट एंगर काम इच्छाएं क्रोध और लालच। आज आप समाज में देखते हो चिंता से लोग भरे हुए हैं, सच झूठ, तनाव, निराशा, बेचैनी है कि नहीं। तो ये चिंता, निराशा, बेचैनी का कारण क्या है, काम इच्छाएं, क्रोध और लालच, लोग हमें और चाहिए, ये नई गाड़ी चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, आदर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और जब हमें ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती तो हम क्या उत्कर्ष हो जाते हैं, क्रोध लोग चिंता में और तनाव बढ़ जाता है। पर अगर आपके पास सीधा ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आप भक्तियों का उपयोग कर रहे हो तो आप क्या सिद्धांत मानोगे, सारा जीवन ऊंचा विचार, सारा जीवन बिताओगे ऊंचे विचारों को रखोगे सदा, तो बिना किसी चिंता के सरलता के साथ जी सकोगे। अगर हमारा ये व्यवहार रहेगा ऊंचा जीवन सादा विचार, तो फिर समाज में आज अनुभव कर रहे हो वही परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भगवद गीता का जो भक्ति योग का जो सिद्धांत है, इट इज प्रैक्टिकल नॉट थियोरेटिकल। जब किसी रिश्तेदार मित्र के साथ कोई दुर्घटना बीतती है तो हम शोक मनाते हैं कि नहीं, पर भगवद गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो ये देखोगे कि आत्मा सनातन है, शरीर नष्ट है। कई बार हमारे भक्तों को इन शोक सभाओं में जाना पड़ता है, और जब शोक सभा में जाते हैं और लोग दुखी रहते हैं, जब उनको उपदेश दिया जाता है गीता का, हर चीज अस्थाई है, शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है, तो फिर वो ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कि यहां सनत कुमार कह रहे हैं कि भक्ति योग का जो सिद्धांत है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसका व्यवहार कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शास्त्र की शिक्षा है ये थियोरेटिकल है। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य ने बड़े परिश्रम के साथ लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनका आगे अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। और आज प्रभुपाद जी ने यह साबित करके दिखाया है कि इस आधुनिक युग में भी इन ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो भक्ति का सिद्धांत है इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट फीजिबल। भक्ति का जो सिद्धांत है संक्षेप में क्या है, परम भगवान है हर चीज के स्वामी, मन के, बुद्धि की, इंद्रियों के। जैसे कि नारद मुनि कहते हैं सर्वपापी विधि मुक्तम निर्मलम ऋषि के ऋषि के सेवनम भक्ति। तो हर चीज के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, धन के स्वामी, संपत्ति के स्वामी कौन है? इसलिए जो असली भक्त है, जो भक्तियों का पालन कर रहा है, वह हर सुविधा का, हर गुण का, हर कला का उपयोग करना चाहता है भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो प्रभुपाद जी चाहते थे उनकी पुस्तकों में सुंदर तस्वीरें भी हो। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों से पूछा किस में पेंटिंग की कला है, और फिर जब भक्त की पेंटिंग की कला के साथ उनसे निवेदन किया आप इस कला का उपयोग करो किस लिए, भगवान के सुंदर चित्रों को बनाने के लिए। इसलिए आप देखते हो प्रभुपाद के ग्रंथों में सुंदर सिद्धांत के साथ सुंदर चित्र भी है। प्रभुपाद जी एक समय वृंदावन में थे, मैं उनके साथ था, तो प्रभुपाद जी ने कहा आर्ट बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड, अंदर जो सिद्धांत है वो बहुत ऊंचा है और उनको प्रकाशित किया गया है बड़े सुंदर तरीके से। तो भक्ति योग का जो सिद्धांत है उसका हर स्थिति में उपयोग किया जा सकता है आगे और सारे विश्व में। आज विश्व के हर कोने में इसका संस्था के केंद्र है, विश्व के हर कोने में भक्त हैं जो कि भक्तियों की शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये संदेश केवल भारतीयों के लिए है, ये संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। आगे संत कुमार क्या कहते हैं, योगेश्वर जी भगवान की पूजा करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान प्रकट होते हैं हरि नाम के रूप में और उनके आचर विग्रह के रूप में, कली कले नाम अनुभव कृष्ण होता। तो ये भगवान का एक अवतार उनके नाम के रूप में, फिर उनके आचर विग्रह के रूप में। इस आचर विग्रह और भगवान में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अगर आप इस श्रद्धा से उपासना करोगे कि भगवान स्वयं उपस्थित हैं उनके आचर विग्रह में, ये आचर विग्रह आपसे चर्चा भी करेंगे। साक्षी गोपाल की कथा में आप देखते हो ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि आपने हमारे पिता को भंग खिलाकर उनका धन लूट लिया, ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये झूठा आरोप है। जब पूछा गया कोई साक्षी है, ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ कहा है साक्षी कौन, भगवान का विग्रह गोपाल। और फिर धनी व्यक्ति के बेटे ने क्या सोचा, ये संभव है क्या, कोई मूर्ति कभी प्रमाण दे सकती है, जाओ ले आओ उस मूर्ति को। भग गया उत्साह के साथ, भक्त ने भगवान से निवेदन किया मेरी इज्जत का प्रश्न है, बचाइए मुझे। मैं इतनी दूर कैसे चल के आऊंगा, मेरे वृंदावन में थे पहुंचना था उड़ीसा। तो भक्त ने कहा अगर आप बोल सकते हो भगवान तो चल भी सकते हो। महानंदपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, भगवान ने चंदन लाने गए रास्ते में रुके रेमुना में, जहां की उन्होंने सुना यहां बड़ी सुंदर खीर बनती है भगवान के लिए, जिसका नाम है अमृत केली खीर, जिसका थीस ऐसा है जैसे कि स्वर्ग बनकर आ रही है। उनकी इच्छा थी अगर चखने का मौका मिल जाए, भावना थी मैं लौटकर अपने गोपाल के लिए भी इसी प्रकार की खीर बनाऊंगा। फिर यह भाव के हृदय में प्रकट हुआ जब भगवान को भोग लग रहा था। नियम ये है जो भोग कर रहे हो ये भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। और इसलिए महानंद पूरी शर्मिंदा होकर निकले मंदिर से, भगवान को पता था क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या इच्छा थी। भगवान ने क्या किया, स्वयं खीर के प्याले को चुरा कर छुपा दिया और सपने में पुजारी को आदेश दिया, ये खीर का प्याला मैंने चुरा कर छुपाया है, जाओ बाजार में आनंदपुरी को ढूंढो। तो कहने का तात्पर्य है ये निर्भर है हमारी श्रद्धा के ऊपर। अगर आप सोचोगे ये मूर्ति पत्थर की है, पीतल की है, लकड़ी की है, तो मूर्ति पीतल की रहेगी। तो अगर आप सोचोगे यहां भगवान स्वयं उपस्थित हैं इस आचार्य में, तो ये भगवान आपसे बोलेंगे भी। और आपका सौभाग्य है वृंदावन धाम में आपके आप दर्शन प्राप्त करते हो बड़े सुंदर विग्रह का। तो यहाँ भगवान की पूजा करो तथा श्रीपद भगवान भगवान के महिमा का श्रवण एवं कीर्तनम करो। तो ये संदेश कि हमें भगवान के महिमा का श्रवणम और कीर्तनम करना चाहिए। आप बार बार पढ़ते हो या कभी कभी, हर तात्पर्य में इस विषय की चर्चा है। शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जहां की इसी विषय की चर्चा है। प्रथम स्कंद से बारहवें स्कंद तक इस विषय की चर्चा की जाती है, क्या कारण है। प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बाबा कहते हैं कई बार 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 सुनने से वो बात हमारे हृदय में बैठती है। तो इस विषय ये विषय कि शरणम कीर्तनम करना चाहिए, भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए आसक्ति बढ़ाने के लिए, ये विषय हम लगभग रोज सुनते हैं हर क्लास में, चाहे वो क्लास में नया भक्त दे रहा है या सन्यासी दे रहा है। निर्णय यही है भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, श्रवणम कीर्तनम। तो यहां भी सनम कुमार कह रहे हैं भगवान के प्रति आसक्ति बनाने के लिए भक्तियों का पालन करो, भगवान की उपासना करो, भक्तियों का उपयोग करो परिवार में और भगवान की महिमा का गुणगान करो। तो ये है हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, भगवान के भक्तों, भगवान के गुणों का क्या करें, गुणगान करें, श्रवणम कीर्तनम। नामदा भक्ति का ज्ञान हमें तुलाद बनाने दिया था, वही ज्ञान उन्होंने साउंड पहले ठीक थी जी को बढ़ा दिया है। यही ज्ञान सबसे पहले प्रहलाद ने दिया है, तो यही ज्ञान प्रहलाद ने प्राप्त किया था किसी के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा। प्रहलाद के पिता तपस्या कर रहे थे क्योंकि प्रहलाद माता की गोद गर्भ में थे, इंद्र दूसरे देवता का शीर करने जा रहे थे, नारद मुनि ने देखा होगा क्यों ये निर्दोष औरत को गजीब करने जा रहे हो, इस औरत के घर में असुर है। नारद मुनि ने यकीन दिलाया असुर नहीं, महान संत है इस औरत के घर में। तो फिर प्रहलाद को प्रहलाद माता के घर में थे, उनकी माता को नारद मुनि ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटे से ये बताओ कि आज पाठशाला में क्या अपने अध्यापकों द्वारा सीखे हो, सब विषय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विषय था। प्रहलाद ने क्या सुनाया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो ये नवदा भक्ति आरंभ होती है हरे भगवान के नामों के उच्चारण से। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान की महिमा का श्रवणम एवं कीर्तनम करो। तो भगवान की महिमा का श्रवणम कीर्तनम के दो साधन है, एक है हरि नाम का उच्चारण। ठाकुर भक्तिदास जी कहते हैं अगर आपने भीख मांगनी है तो किस विषय की भीख मांगो, हरि नाम की। ये ताको वाणी ताको सदा हरि बोले ताको, चाहे आप गृहस्थ हो या गृह ब्रह्मचारी या सन्यासी, कृपा करके क्या करो, सदा हरि बोले ताको, सदा कृष्ण का नाम लो। ये है शास्त्रों का निर्णय। दूसरा साधन है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का अर्थ है भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान के उपदेश का गुणगान। और कृष्ण कथा करोगे तो भक्ति में उन्नति करोगे, और कृष्ण कथा नहीं करोगे तो क्या करोगे, प्रज्वलपा, प्रज्वलपा करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, अत्याहारा प्रायश प्रज्वलपा ये मांगा जन संघर्षोले न सभी भक्ति विनशति, विनशति का नष्ट करना। तो अगर हम प्रज्वलपा इत्यादि कार्यों में जुड़ेंगे तो भक्ति का सुंदर बगीचा जो है हो जाएगा। और अगर हम कृष्ण कथा में रुचि लेंगे, जब हम एक दूसरे को मिले खास करके वृंदावन धाम में, तो हर जगह हमें क्या कृष्ण कथा की करनी चाहिए। कृष्ण कथा करोगे तो ध्यान में जीवन ज्यादा सरल होगा, और भौतिक कथा करोगे प्रज्वलपा करोगे तो भक्ति जो है आस्ते आस्ते कमजोर हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति आता है प्रज्वलपा करने के लिए तो हाथ जोड़कर हमें कह देना चाहिए, प्रभु जी हमारे में योग्यता नहीं है, प्रभु आप किसी और से करो, हम प्रज्वलपा में नहीं जुड़ना चाहते। प्रज्वलपा में जुड़ेंगे, वैष्णव निंदा में जुड़ेंगे, अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति का बगीचा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और भगवान के नामों के विषय में जितना नाम लो उतना ही कम है। दिन रात नाम ले सकते हो, थकोगे नहीं। भौतिक समाज में हमें छुट्टी चाहिए, हम तंग आ जाते हैं, लोग दो महीने तीन महीने पढ़ाई करते हैं फिर स्कूल में छुट्टी हो जाती है, जज लोग 2-3 महीने काम करते हैं फिर छुट्टी हो जाती है। पर भक्त कभी ये तो नहीं कहते हैं हम हफ्ते में 5 दिन जाप करेंगे 2 दिन हमें छुट्टी चाहिए। ना 5 दिन नौकरी करते हो 2 दिन छुट्टी चाहिए, 6 दिन नौकरी करते हो 7 दिन छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तंग आ जाते हो, अब चाहते हो तो अभी अगर कुछ रिलीफ मिले यहां से निकलो। पर हरि नाम के विषय में भक्त के मन में ये भाव नहीं आता कि भाई मैंने 5 दिन किया है 2 दिन छुट्टी मिल जाए। क्यों? क्योंकि आनंद बुद्धि वर्धनम, एक लाभ है चेतन पर मारना, इसलिए कि मैल निकलती है। दूसरा लाभ है इसके जाप से केवल क्या ना आनंद ही आनंद। तो सनत कुमार हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें श्रवणम और कीर्तनम भगवान की महिमा और गुणगान करना चाहिए। ये सब कार्य जो है परम पवित्र है, क्योंकि ये सब कार्य परम पवित्र हैं, इन कार्यों के पालन से हम भी पवित्र हो जाएंगे। इस समय हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं? इस समय हमारा हृदय साफ है या गंदा, थोड़ा या ज्यादा? कोले से भी ज्यादा, कोला कितना काला होता है। पापा जी कहते थे हमारे हृदय कोले से भी ज्यादा काला है, इसमें मैल ही मैल है। आजकल आपके प्रधानमंत्री ने एक नया योजना शुरू की है स्वच्छ भारत, तो हम कहते हैं स्वच्छ भारत शुरू होता है स्वच्छ हृदय के साथ। हृदय को साफ करो, है ना, आप हर जगह साफ सफाई करना ठीक जरूरी है। इंग्लिश में कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद जी जब किसी मंदिर में आते थे, खास करके जब भी वृंदावन मंदिर आते थे, बड़े ध्यान से देखते थे कहाँ कोई गंध तो नहीं है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के मंदिर में सबसे ऊंचा स्वच्छ का आधार हो, स्टैंडर्ड हो, पर साथ में हमें हृदय को भी स्वच्छ बना रखना। ये नहीं कि केवल मंदिर को बिल्कुल साफ रख दे और हृदय काला रखे, हृदय को भी स्वच्छ बनाना है। हमारा स्लोगन है स्वच्छ भारत स्वच्छ हृदय, तो हृदय को भी स्वच्छ बनाना। तो लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है स्वच्छ हृदय? हमारा हृदय हर व्यक्ति भी ये कहता है मेरा हृदय तो बिल्कुल साफ है, हर व्यक्ति भी यही कहता है मैं तो सीधा हूँ बाकी सब टेढ़े हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं श्रद्धावान हूँ बाकी सब अशुद्ध, सारी सिंसियरिटी मेरे में है, सारे गुण मेरे में है और सारे अवगुण दूसरों में है। हम अक्सर इस सिद्धांत से होते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना है हमारा हृदय बहन से भरा हुआ है। और अगर आप इस हृदय को स्वास्थ्य साफ करना चाहो तो क्या है माध्यम? क्षेत्र दर्पण मानना और साधु संग में रहकर ये भाव बढ़ता है प्रकट होता है। इसलिए साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा था ध्रुवा भांग में से क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। ध्रुवा ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा उन्हें भक्तों की संगत में रहूं, क्योंकि उनकी संगत में रहूंगा तो सदा सेवा भावना रहेगी। तो हमारी योजना होनी चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें, और भक्तों की संगत में रहोगे तो भक्ति का उत्साह भी बढ़ेगा। तो सनत कुमार हमें उपदेश दे रहे हैं कि पवित्र कार्यों का पालन करना, और इन पवित्र कार्यों का पालन करेंगे तो हमारा अशुद्ध हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग किया जाएगा किसमें, भगवान की सेवा में। तो आध्यात्मिक जीवन आराम होता है साधु संघ के माध्यम से। इसलिए जबकि चैतन्य महाप्रभु ने पांच महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? साधु संग, तो साधु संग में हमें रहना चाहिए, भक्तों के गुणों को देखना चाहिए, सेवा भावना रखनी चाहिए, ना ही भगवान के प्रति उनके भक्तों के प्रति भी। और सेवा भावना रखोगे, ध्यान को जाप करोगे, तो अवश्य ही इन पवित्र कार्यों के पालन से आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। और अंत में क्या परिणाम होगा? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और जब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, किसके प्रति घटेगी? हाँ, माया के प्रति। तो अगर आप भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहते हो तो इस शिक्षा का पालन करो, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, माया के प्रति आसक्ति घटेगी। और अगर माया के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो क्या घटेगी? कई बार हम इतने ध्यान पूर्वक भक्ति की विधियों का पालन नहीं करते, जिसका ये लाभ हो, ये परिणाम होता है कि माया के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। अगर आप माया को दूर रखना चाहते हो तो हमें सदा सावधानी से जाप करना पड़ेगा, साधु संग में रहना पड़ेगा, शास्त्र में ध्यान करना पड़ेगा और सेवा में जुड़ना पड़ेगा। अगर हम इन विधियों का पालन करें तो हम बिना शंका के भक्ति के मार्ग में उन्नत कर आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति के मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। और अंत में क्या प्राप्त होगा? कृष्णा प्रेम, जो कि जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए लक्ष्य? तो अगर हम इस श्लोक का उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे, तो कृष्ण प्रेम अंत में प्राप्त कर सकोगे, जो कि आप सबका लक्ष्य है या नहीं? तो ये श्लोक का लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? आप ऐसे कितने भक्तों ने ग्रंथ के वेतन के मैराथन में सेवा की थी?
थैंक यू।
और वृंदावन मंदिर के संकीर्तन भक्त बस अभी जाने वाली है, तो उसमें कौन कौन जाएंगे? तो दामराशि का और धर्मात्मा चालू मानसी का। हरे कृष्ण। हमारे में दिसंबर के महीने में तो भक्तों ग्रंथों के वेतन का उत्साह बढ़ जाता है, पर ये नहीं कि दिसंबर में गीता जयंती के महीने में बढ़े, बाकी 11 महीने ढीले हो जाए। माया का मैराथन साल में कितने महीने रहता है? एक महीना नहीं, एक। कोई कह रहा था माया का मैराथन एक महीने रहता है, 12 महीने रहता है। तो आप भक्तों का मैराथन एक महीने रहना चाहिए या 12 महीने? भगवान में सदा प्रचार का उत्साह होना चाहिए। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तो मैं प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय न कर हुआ है ना होगा। तो ये है निवेदन भक्तों से, प्रचार में उत्साह रखिए और ध्यान पर जाप कीजिए। एनी क्वेश्चन? प्रश्न? हाँ, कितना नहीं करता है? जल्दी जल्दी।
महाराज श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के सेक्शन में लिखा है, प्रहलाद महाराज को जो वीरेंद्र काशी नरसिंह भगवान ने ब्लेस किया फाइनली, तो उनका जो रहा हुआ कल्मक्ष था वो भी चला गया। तो जब हमने ये पढ़ा कि रहा हुआ कल्मक्ष प्रहलाद महाराज ने जिनका ध्यान इतना अगाढ़ लगा हुआ था कि उनको आग में डाला था, वो डिस्टर्ब नहीं हुए,
कंटामिनेशन
किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं हुए, जैसा प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता के, एषम अंतर्गतम पापम भजते, जिसके पाप खत्म हो गए उसी की दृढ़ भक्ति जागृत होती है। प्रहलाद महाराज की पूर्ण दृढ़ भक्ति थी,
यह उनकी विनम्रता है। बादशाह यही सोचता है मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं, मन में यही भावना थी मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं, मेरा नाम बदलो, मेरा नाम मिलोगे तो सारे कौन से मान हो जाएंगे। हरे कृष्ण।